तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। व्यापारी घोड़े पे बैठने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर उस सुंदर बगीचे पर पड़ी। बगीचा पूरा सुंदर सुंदर बड़े बड़े लाल लाल गुलाबों से भरा था और क्या खुशबू थी उन गुलाबों की। व्यापारी का मन ललचा गया। उन्होंने सोचा कि आखिरकार वो अपनी ब्यूटी की छोटी सी मांग पूरी कर सकेंगे। उन्होंने झुककर एक सुंदर सा गुलाब तोड़ लिया। अनजाने में व्यापारी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने गुलाब तोड़ा, एक शेरों जैसी जोरदार दहाड़ गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे जमीन थर थर कांपने लगी। व्यापारी एकदम डर गए और जैसे ही वो पलटे, उनके होश उड़ गए। अचानक व्यापारी के बिल्कुल पीछे एक लंबा चौड़ा भालू जैसा शरीर और शेर जैसे दांतों वाला भयानक सा बीस खड़ा था। उसके बड़े बड़े नाखून और लाल लाल आंख देखकर व्यापारी की हालत भीगी बिल्ली जैसी ही हो गई। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। बीस्ट व्यापारी के पेट पर पैर रखकर भारी भरकम आवाज में बोला,
मैंने तुम्हें रात को खाना दिया, सोने को बिस्तर दिया, पहनने को कपड़े दिए और यहाँ तक कि बिना तुम्हें जाने सफर करने के लिए अपना घोड़ा तक दिया, और बदले में तुमने क्या किया? मेरे बगीचे से चोरी की। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
व्यापारी ने बीस्ट के आगे हाथ जोड़कर उन्हें समझाया,
सॉरी सॉरी बीस्ट भाई, मुझे मत खाना, पहले मेरी बात तो सुन लो।
बीस्ट को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने व्यापारी की बात सुनी। व्यापारी ने बीस्ट को अब तक की सारी बात समझाई, अपनी बेटी ब्यूटी की मांग के बारे में और उसके नुकसान के बारे में सारी बात कही। बीस्ट का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। कहानी खत्म होने पर बीस्ट ने व्यापारी से कहा,
तुम्हारी कहानी मुझे सच्ची लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें ब्यूटी को मेरे पास रहने के लिए भेजना होगा, बोलो मंजूर है?
व्यापारी की जान का सवाल था। अगर वो हाँ करते तो अपनी सबसे प्यारी बेटी को खो देते, और ना करते तो अपनी जान खो बैठते। बड़ी मुश्किल से ना चाहते हुए व्यापारी ने बीस्ट की बात मान ली। कम से कम इस तरह सब लोग जिंदा तो बच जाते और उसकी बेटी एक राजमहल में रहती। बीस्ट ने उन्हें जाने दिया और वो घोड़े पे बैठ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने ब्यूटी को सारी बात बताई और माफी मांगी। ब्यूटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं थी, आखिर उनकी जान का सवाल था। और ब्यूटी ने मन बना लिया कि वो अपने पिताजी का प्रॉमिस नहीं टूटने देगी और बीस्ट के पास खुशी खुशी चली जाएगी। वो बीस्ट के भेजे हुए घोड़े पर अपना सामान लेकर बैठ गई और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ी। जब ब्यूटी महल पहुंची तो उसे भी अपने पिताजी जैसा ही अनुभव हुआ। महल का दरवाजा खुला था, डाइनिंग रूम के टेबल पर खाना तैयार था और ब्यूटी के लिए कमरे में बिस्तर तैयार था। बिस्तर पर एक चिट्ठी थी जिसमें बीस्ट ने लिखा था,
स्वागत है तुम्हारा ब्यूटी, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी नींद मिले, मैं तुम्हें कल सुबह नाश्ते पर मिलूंगा, गुड नाइट।
सुबह जब ब्यूटी उठी तो डाइनिंग रूम में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। ब्यूटी टेबल पर बैठने ही वाली थी कि एक भारी आवाज ने ब्यूटी को डरा दिया। आवाज बीस्ट की थी,
गुड मॉर्निंग ब्यूटी, मेरा नाम बीस्ट है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में जरूर बताया होगा,
बीस्ट ने कहा। ब्यूटी ने यहाँ वहाँ देखा पर कोई दिख नहीं रहा था, बस आवाज सुनाई दे रही थी। ब्यूटी घबरा गई थी पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली,
जी गुड मॉर्निंग मिस्टर बीस्ट, आपने पिताजी की जान बख्श दी, उसके लिए थैंक यू, क्या आप प्लीज मेरे सामने आ सकते हैं?
बीस्ट ने कहा, अगर तुम वादा करो कि डरोगी नहीं तो।
अब ब्यूटी को लगा कि बीस्ट शायद उतना भी बुरा नहीं हो सकता जितना उसे पहले लग रहा था।
वादा करती हूँ नहीं डरूंगी,
ब्यूटी ने कहा। पर जैसे ही वो मुड़ी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक खूंखार लाल आंखों वाला जानवर खड़ा था। बीस्ट तुरंत पलट गया और बोला,
देखा, मुझे पता था तुम डर जाओगी।
ब्यूटी को बहुत बुरा लगा और उसने बीस्ट से सॉरी कहा। धीरे धीरे ब्यूटी और बीस्ट की दोस्ती हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और ब्यूटी को लगा कि बीस्ट भले भयानक दिखता है पर दिल का बहुत अच्छा है। बीस्ट ब्यूटी का बड़ा ख्याल रखने लगा और रोज उसे गुलाब के फूल देने लगा। रोज दोनों हंसते खेलते जिंदगी जीने लगे और धीरे धीरे ब्यूटी अपने पिताजी और बहनों के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। ब्यूटी को अब बीस्ट पसंद आने लगा था, चाहे जैसा भी दिखे। उसका दिल साफ था और उसमें ब्यूटी के लिए बेहद प्यार था। एक दिन जब बीस्ट ब्यूटी के साथ खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि ब्यूटी रो रही थी। उसने ब्यूटी से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। ब्यूटी ने बताया कि वो अपने पिताजी को मिस कर रही थी। इतने महीनों में उन्होंने याद तक नहीं किया, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। बीस्ट ने कहा कि इसमें रोने की कोई बात नहीं, वो अभी ही ब्यूटी को अपने पिताजी से मिलवा सकता है। ब्यूटी हैरान रह गई। फिर बीस्ट ने उसे एक जादुई आईना दिखाया। जब ब्यूटी ने उसमें झांक कर देखा तो उसे अपने पिताजी दिखे। ब्यूटी खुशी से पागल हो गई और बीस्ट का शुक्रिया अदा करने लगी। पर उसकी खुशी अचानक दुख में बदल गई। ब्यूटी ने अपने पिताजी को एक नजर फिर देखा तो उसे आईने में मानो कोई और ही दिख रहा हो। पिताजी अचानक बूढ़े और बीमार लग रहे थे, अकेले बिस्तर पर लेटे खांस रहे थे और आसपास कोई नहीं था। ब्यूटी को बहुत बुरा लग रहा था। उसने बीस्ट से मिन्नत की,
प्लीज बीस्ट, मुझे पिताजी के पास एक हफ्ते के लिए जाने दो, मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। वो जैसे ही ठीक हो जाते हैं मैं जरूर लौट आऊंगी, प्लीज बीस्ट।
बीस्ट को बिल्कुल मन नहीं था ब्यूटी से दूर होने का, पर ब्यूटी जानती थी कि बीस्ट का मन साफ है, वो कभी उसे ना नहीं कहेगा। अपने दिल को मनाते हुए बीस्ट ने ब्यूटी को एक हफ्ते के लिए जाने की परमिशन दे दी।
जाओ ब्यूटी, अपने पिताजी के पास जाओ और मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम एक हफ्ते में लौट कर नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। अब मर्जी तुम्हारी है।
ब्यूटी ने बीस्ट को वादा किया कि वो एक हफ्ते में जरूर लौट आएगी और जल्दी से अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसके पिताजी के चेहरे पे खुशी ही खुशी छा गई। उन्हें लगा था कि ब्यूटी कभी लौट कर नहीं आएगी। ब्यूटी ने अपने पिताजी की खूब सेवा की। जब ब्यूटी ने पिताजी से पूछा,
आप पूरे घर में अकेले हो, मेरी दोनों बहनें कहाँ हैं?
तब पिताजी ने उसे उदास होकर बताया कि वो दोनों लालची बेटियां शादी करके शहर चली गईं। दोनों ने मुड़कर देखा तक नहीं। ब्यूटी ने अपने पिताजी को हौसला दिया और वादा किया कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते ब्यूटी कहीं नहीं जाएगी। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया और ब्यूटी दिन रात अपने पिताजी की सेवा में लगी रही। अब भी वो काफी बीमार थे और ऐसे में ब्यूटी बीस्ट को दिया हुआ वादा भूल गई थी। फिर अचानक एक रात ब्यूटी को बहुत बुरा सपना आया। उसने सपने में देखा कि बीस्ट अपने गुलाब के बगीचे में गिर पड़ा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। बेहोशी की हालत में वो ब्यूटी ब्यूटी कर रहा था। ब्यूटी झटके से जाग गई और उसे अपना वादा याद आ गया। अगले ही दिन उसने अपने पिताजी को सॉरी कहा और समझाया कि उसे जाना पड़ेगा और वो महल की ओर निकल पड़ी।
मम्मा, बीस्ट मर गया था?
नहीं, अब तक तो नहीं। पर जब ब्यूटी वहाँ पहुँची तब उसने देखा कि बिल्कुल अपने सपने की तरह बीस्ट बगीचे में था और अधमरी हालत में ब्यूटी ब्यूटी चिल्ला रहा था। ब्यूटी ने तुरंत बीस्ट का सर अपनी गोद में रखा। ठीक वैसे ही जैसे तुम अब सो रहे हो और उससे कहा, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिताजी अब ठीक हैं, प्लीज उठ जाओ, मैं यही हूँ। बीस्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ब्यूटी की ओर देखा। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा,
ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा।
ब्यूटी ने भी मुस्कुराया और उससे शादी के लिए हाँ कर दी।
फिर एकदम से बिजली कड़की, आसमान में रोशनी हुई और ब्यूटी घबरा कर ऊपर देखने लगी।
जब ब्यूटी ने फिर से बीस्ट की ओर देखा तो उसकी गोद में बीस्ट नहीं था।
बीस्ट नहीं था, कहाँ गया?
बीस्ट अब एक हैंडसम, बिल्कुल हीरो जैसा राजकुमार बन चुका था। ब्यूटी उससे देखकर पहले तो डर गई, पर फिर उस राजकुमार ने ब्यूटी को समझाया कि दरअसल वही बीस्ट है जिसे एक ईविल विच ने श्राप दिया था और एक डरावना बीस्ट बना दिया था, और वो श्राप तब तक नहीं टूटता जब तक कोई बीस्ट से सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। पर आज सालों बाद किसी ने बीस्ट को सच्चा प्यार किया और श्राप टूट गया। बस फिर क्या था, प्रिंस ने ब्यूटी से शादी कर ली और ब्यूटी के पिताजी को भी अपने राजमहल में रहने के लिए बुला लिया और सब लोग हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। The end.
Wow! Thank you, mommy.
Always welcome, बेटा। तुम भी ब्यूटी की सिखाई एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बीस्ट डरावना था पर बुरा नहीं था, वो तो एक प्रिंस था जिसको बुरे हालात ने बीस्ट बना दिया था, है ना? चलो अब सो जाओ और कल हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, ओके? गुड नाइट बेटा।
गुड नाइट।